ओम शांति। सभी बच्चे और एक दफा बोलो ओम शांति। आज का विषय है कि सोशल मीडिया का बच्चों के जीवन में, पढ़ाई में उसका प्रभाव क्या पड़ता है। देखो, दुनिया 21वीं सदी चलती है। अभी समय और परिस्थिति के अनुसार मीडिया का रोल 100% है। मनुष्य के जीवन में सब कुछ कार्य आज इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, ईमेल के द्वारा चलता है, तो उसको हम कंप्लीट छोड़ नहीं सकते। जैसे समय परिस्थिति है उसी अनुसार चलना पड़ता है। लेकिन साइंस ने ऐसा एक साधन दिया मनुष्य को हर प्रकार का सुख और शांति देने के लिए, लेकिन उसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग करना मनुष्य के हाथ में है। क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है, साधन जो है उसके पास अपनी बुद्धि नहीं है। जैसे आप उस साधन को चलाना चाहते हो, जिस समय चलाना चाहते हो, जिस परिस्थिति के अनुसार उसको यूज करना चाहते हो, वो मनुष्य के पास बुद्धि दिया है। अपनी बुद्धि के अनुसार, समझ के अनुसार अगर साधन को यूज करते हो, वो मनुष्य को आज भी सुख शांति दे सकता है। उदाहरण बताता हूं, देख लो, साइंस ने मोबाइल दिया। हां, बच्चों को मोबाइल का यूज करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल मोबाइल छोड़ दो संभव नहीं है। कई स्कूल में लेसन्स भी मोबाइल पर पढ़ाते हैं। लेकिन मोबाइल कैसे यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए, तो मैंने अपने जीवन में देखा 50% बच्चों की जिम्मेवारी है और 25% मां बाप की जिम्मेवारी है। और 25% बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल के टीचर के भी जिम्मेवारी है। पूरे 100% बच्चे नहीं आए। बच्चों के साथ ये तीन गुरु है, मां गुरु भी है, मां बाप भी है, स्कूल में जाते हैं टीचर भी गुरु है। उनका भी बच्चों को अगर रोज मार्गदर्शन सही मिलता है तो साइंस के साधन को बच्चे सही रूप से यूज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आजकल बच्चों को मां बाप, जब बच्चे छोटे होते हैं, मां बाप बच्चों को बिजी रखने के लिए, खुश करने के लिए मोबाइल दे देते हैं। बच्चा देखता रहता है, खुश होता है, मां अपने कुछ काम करती रहती है बच्चों को खुश करने के लिए, बिजी करने के लिए, वो आदत बन जाती है। बच्चे बड़े होने के बाद उनका लक्ष्य पढ़ाई में नहीं है, मोबाइल में। किसने सिखाया? मां गुरु ने। इसलिए परिवार में मां बाप को भी ध्यान देना चाहिए। बच्चों को जन्म देने के बाद बच्चों को शिक्षा भी देनी है। हां, मोबाइल देना है समय पर, आधा घंटा जब आप बैठते हो अच्छी चीज कोई दिखाओ, बच्चे ये देख लो ये कैसे स्पीच करते हैं, अभी आपको मैं ऐसे सीन दिखाऊंगा। जैसे मां बाप सत्संग में जाते हैं, छोटे बच्चों को ले जाते हैं, छोटे बच्चे कैसे भजन गाते हैं मां बाप के साथ। छोटे बच्चे हैं, अच्छी चीज है, मां बाप उनको ऐसी शिक्षा देते हैं, ऐसे आपको वीडियो दिखाऊंगा, आप देखना। सोशल मीडिया से बच्चों के जीवन में भी बहुत परिवर्तन है, बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन उसका मेन श्रेय जाता है सबसे पहले मां बाप। मां बाप को भी बच्चों के सामने मोबाइल लेकर के आप देखते रहो, बात करते रहो, वीडियो देखते रहो और कुछ देखते रहो, और बच्चों को बोलो कि आप पढ़ाई करो, ये संभव नहीं है। हमें भी घर में रहते उन चीजों का त्याग करना चाहिए। बच्चे पढ़ने बैठते हैं, उनको पढ़ने के लिए अलग कमरे में देना है। हाँ, मोबाइल देना, उनको कहना अभी नहीं, होमवर्क करो, पढ़ाई करो, उसके बाद एक घंटा मोबाइल पर खेल देखो, अच्छी कोई बात समाचार दिखाओ उनको, उनको भी दिखाओ क्या देखना चाहिए, सिखाना बचपन से ही। साधन को एकदम मोबाइल देखना ही नहीं चाहिए तो आपने घर में नहीं दिया, पड़ोसी के पास जाएगा, दोस्त के पास जाएगा और कहीं जाएगा। अगर यहां नहीं मिलता, बच्चे भी हुशार है, बाहर जाएंगे तो बच्चों को समझाने के लिए सबसे पहले घर में मां बाप की जिम्मेवारी है। छोटे होते हुए भी, एकदम छोटे हैं, बच्चों को मोबाइल दिखा के चित्र दिखाते हैं, दिखा के छोड़ देते हैं, मां बाप कुछ काम में लग जाते हैं, बच्चों को वही आदत बन जाती है। दूसरा, बच्चे जब पढ़ते हैं, सोते हैं, बच्चों को सिखाना मोबाइल अपने तकिए के नीचे नहीं रखना, चार्ज जब करते हो उस समय चार्जिंग में फोन आए, बच्चे फोन उठाओ नहीं बताना है, क्योंकि फोन चार्जिंग में लगाया, उस समय अगर फोन आया, मां बाप ही कहते हैं बच्चे ये फोन ले लो, तो उसको ये पता नहीं, उससे डिस्कनेक्ट करके फिर बोलना चाहिए, बात करना चाहिए। तो ये भी मां बाप को ही सिखाना है। दूसरा नंबर आता है बच्चों को, पहले मां बाप की जिम्मेवारी है बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर रखना, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे चीजें आते हैं। बच्चों को सिखाना है बिठा करके, बच्चे मोबाइल में खेल देखो, अच्छे मिक्की माउस के अच्छे कार्टून आते हैं वो देख लो, अच्छे अच्छे लेक्चर्स आते हैं, बाहर के चीज खाने से क्या होता है, तो वो ऐसे चित्र आते हैं, वीडियो आते वो दिखाओ। तो ये बच्चों को अगर आप पहले से आदत डालेंगे, बच्चे ऐसी चीजें, लड़ाई झगड़ा, कई लड़ाई चल रही है, कोई स्कूल में बच्चे आपस में मिलकर कुछ बात करते हैं, बच्चों को परेशान करते, ऐसे भी वीडियो आते हैं, बच्चे ये देखना नहीं, ये आते ऐसे मिटाना है। तो अगर ये बचपन से मां बाप मोबाइल देते समय बच्चों के अंदर शिक्षा डालेंगे, तो ऐसे बच्चे आज भी हम भी देखते हैं, ऐसे बच्चे भी हैं जो मोबाइल का सदुपयोग करते हैं, इंटरनेट का सदुपयोग करते हैं, ईमेल का सदुपयोग करने वाले बच्चे हैं, उनका मेन लक्ष्य मां बाप के ऊपर है। अगर मां बाप पढ़े लिखे हैं, अनुभवी है, बच्चों को भी ऐसे शिक्षा देते हैं, क्योंकि बच्चों के पास सिर्फ वर्तमान में जो देखा दिखाई दिया वही लेते हैं, उनको इसके अंदर अच्छा ये गलत ये पता नहीं होता है, कर्मों की गति वो नहीं जानते हैं। जो अच्छा लगा, लड़ाई झगड़ा देखा, वही अच्छा लगता है। नेगेटिव पर आज के बच्चों की एक मानसिकता हो गई है, नेगेटिव चीज है, गलत चीजों पर पहले ध्यान जाएगा, अच्छी चीजों पर नहीं जाते हैं। कहीं बच्चे अच्छे स्पीच करते हैं, छोटे छोटे बच्चे प्राइम मिनिस्टर भारत के बैठे हुए, उनके सामने स्पीच करते, इतने बच्चे होशियार, विदेश में भी हर जगह पर। तो ऐसी चीजें दिखाने से बच्चों के अंदर उमंग उत्साह, हमको भी ऐसी स्पीच करना चाहिए। सोशल मीडिया के द्वारा बच्चों को भी अच्छा ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन इसकी जिम्मेवारी मां बाप के साथ है। और बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए, स्कूल में कभी भी मोबाइल लेके नहीं जाना चाहिए। जो बच्चे समझते हैं स्कूल में मोबाइल ले जाना चाहिए, वो हाथ उठाओ। जो बच्चे समझते हैं स्कूल में मोबाइल लेके जाना चाहिए, ऐसे कोई बच्चे है नहीं, तो वहां टीचर की जिम्मेवारी है। टीचर भी कहेगा मोबाइल जो है एक जगह पर इधर रख दो, अगर किसी ने लाया है तो इधर जमा कर दो, जाते समय ले लेना। अगर स्कूल में भी टीचर योग्य है, हां बच्चों को एकदम रोक नहीं सकते आज की दुनिया में, मोबाइल लेके नहीं आओ, मम्मी पापा ही कहते हैं कुछ हुआ तो फोन करना, लेने आते हैं, जाने आते, छोड़ने आते हैं, मोबाइल पर फोन कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, तो ले आते बच्चे। तो टीचर अगर योग्य है, ये व्यवस्था हो सकते, बच्चे जिसके पास भी मोबाइल है, स्कूल के गेट के अंदर आते ही एक स्थान बनाओ, उसमें सब मोबाइल जमा कर दो। हां जाते समय हरेक अपना मोबाइल लेके जाना, स्कूल में पढ़ते समय मोबाइल की जरूरत नहीं है। नहीं लेके आओ, ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते, समय परिस्थिति के अनुसार, ऐसे देखने में आया। ऐसे स्कूल भी हमने देखे कि बच्चे ले आते हैं, स्कूल की टीचर आते ही सब बच्चों को कहते हैं बच्चे मोबाइल सभी एक जगह पर जमा कर दो, जाते समय ले जाना। आपका काम घर से फोन आएगा, कुछ भी आएगा, वो बाहर जाने के बाद लेने वाला आएगा, स्कूल लेट छुटा, मां बाप लेने आते हैं, मम्मी आती है, पापा आता है लेने के लिए, और कोई आता है, कुछ भी मैसेज देना हो तो गेट से बाहर, स्कूल के अंदर नहीं। ये जिम्मेवारी टीचर की है। और बच्चों को खास ध्यान देना चाहिए, कभी भी मोबाइल को चार्ज करने लगाते हो चार्ज में चालू है उसी समय बात नहीं करना, कितना भी फोन आने दो पहले स्विच ऑफ करना है, लीड से अलग करना चाहिए, फिर बात करके मम्मी पापा को दे दो या आप बात करो। ये बच्चों को ध्यान जरूर देना चाहिए। एक दूसरा, रात को सोते समय अपने सोने के खटिया से जब तक किया है सिर के नीचे, सिर के बाजू में मोबाइल नहीं रखना, कम से कम 10-15 फीट दूर रखना चाहिए, कि उसके रेडिएशन जो है उनका इतना करंट है मोबाइल का, उसका दिमाग के ऊपर प्रभाव डालता है। आजकल बच्चे देखो कुछ भी पूछो याद नहीं है, बच्चों को जब भी बैठो नींद आती है। कारण क्या है? नींद रात को करते दिन में नहीं करते, पढ़ते समय नींद नहीं करते हैं, स्कूल में नींद नहीं आती है। इसका कारण क्या है? कि मोबाइल के ऊपर बहुत समय देखते रहते हैं, उसका रेडिएशन, उसका इतना प्रभाव है, बुद्धि के ऊपर प्रभाव पड़ता है, कुछ याद ही नहीं रहेगा, जब भी बैठे एकदम डल। जब भी बैठेंगे स्कूल में कहीं भी पढ़ने बैठो नींद आ जाएंगी। तो मोबाइल को भी कब यूज करना। और तीसरा, आज छोटे छोटे बच्चों को देख लो चश्मा लगाया है, क्योंकि मोबाइल में बहुत समय देखते रहेंगे, उसकी इतनी लाइट है, उस लाइट से हमारे आंखों के ऊपर प्रभाव पड़ता, आंखें उसे दिखाई नहीं देगा। आगे जाके बड़े होकर के बहुत कुछ करना है तो कैसे करेंगे, कितना दिन चश्मा पहनते रहेंगे? इसलिए बच्चों को ध्यान देना चाहिए। हां, एक घंटा जिस दिन रविवार के दिन या रोज स्कूल से आए, होमवर्क करो, अपनी पढ़ाई सब कुछ करो, उसके बाद एक घंटा मोबाइल जरूर देखो, उसमें भी खेल, अच्छे किसी का स्पीच है, ऐसे कुछ देखो, लड़ाई झगड़ा, कोई मारामारी हो रही है और कुछ हो रहा है, ऐसी चीजें नेगेटिव नहीं देखना चाहिए। देखेंगे आपका ही खराब होगा। बच्चों को पढ़ाई में आज फेल हो जाते हैं, फेल होने का कारण कल परीक्षा है, आज ही रोने लग जाते हैं, परीक्षा कल होने वाली है, आज से रोने लग जाते हैं, मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, मैंने ये नहीं किया, क्यों नहीं पढ़ाई किया, सारा साल टीवी में खेलने में मोबाइल में खेलते रहे, एक दूसरों का देखते हैं। फिर भी जो अच्छे बच्चे हैं, संगति संग दोषा का, अच्छे संग में रहना चाहिए। जो बच्चे अच्छी तरह से रोज ज्ञान सुनते हैं, योग करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, होटल में नहीं जाते, बाहर का चीजें नहीं खाते हैं, बाहर की चीजें खाने से क्या होता है, बाहर सफाई नहीं है, स्वच्छता नहीं है, देखो कैसे भी बनाते हाथ स्वच्छ नहीं है, पसीना आता है, पसीना गिरता है, बाहर के पानी पूरी खाते हो, कोई भी आइसक्रीम खाते हो, तो ये सब सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, मोबाइल में टीवी में दिखाई देता है, बच्चे को बहुत लाभ ये करते हैं, लालच दिखाते हैं, तो देख के बच्चों को लगता है ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे खेलना चाहिए, ऐसे लड़ाई करना चाहिए, ऐसे कुश्ती करना चाहिए, तो वो देख करके घर में बच्चे ऐसे करते हैं। इसके लिए मां बाप का ध्यान चाहिए कि बच्चे ये सब नहीं देखना है, ये देख लो, क्रिकेट देख लो, खेल देख लो, बैडमिंटन कैसा खेलते हैं, क्रिकेट कैसा खेलते हैं, कोई बच्चे छोटे अच्छे रोज आता है, अच्छे अच्छे स्पीच करते हैं छोटे बचपन से ही, तो ऐसी चीजें अगर बच्चों को ऊपर मोबाइल के द्वारा टीवी के द्वारा मां बाप और स्कूल के टीचर भी, स्कूल में भी पढ़ाई के समय पर टीचर ने बार बार रोज एक दो दफा ध्यान दिलाना चाहिए, क्योंकि इस घर से बाहर आने के बाद स्कूल के टीचर का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि बच्चों का टीचर पर विश्वास होता है, हमको टीचर ने आज ये कहा, आके घर में मां बाप को भी सुनाएंगे, आज टीचर ने ये पढ़ाया, ये कहा, ऐसे करो कहा, तो स्कूल के टीचर भी बच्चों को रोज एक दो दफा समय परिस्थिति के अनुसार, मोबाइल एक ऐसी चीज हो गई आज अभी कि श्वास लेना सहज है, मोबाइल के बिगैर नहीं रह सकते हैं। जैसे अमेरिका में लोग कहते हैं शरीर के लिए श्वास जितना जरूरी है वैसे कार जरूरी है, कार के बिगैर वहां रह नहीं सकते हैं, हर जगह कहीं भी जाओ तो कार चाहिए। तो आज भी हमारा जीवन में ऐसे हो गया, ऐसे साइंस ने हमारे अंदर एक विशेषता को साइंस के हमारे जीवन में भर दिया कि मोबाइल के बिगैर एक मिनट भी रह नहीं सकते हैं। हर चीज, बैंक देख लो आप, कोई समाचार देखना चाहते हो, किसी को फोन करना, आने जाने में बहुत टाइम जाता है एक जगह से दूसरी जगह, बैठे बैठे एक मिनट में फोन करो। हाँ करो, जरूरी है, समय बहुत कम है, एक हर जगह पर जा नहीं सकते हैं। लेकिन मुरली क्लास में बैठे हो, योग करने बैठे हो, हाँ जो अच्छे कोई मंदिर में जाते हो, अच्छे कोई सत्संग में जाते हो, वहां आप मोबाइल लेकर के अंदर घुसते हो, ये मर्यादा नहीं है। इस पर बच्चों को बड़ों को ध्यान देना, जैसे कि अपना अभी हम इधर जो बैठे बाबा के बच्चे हैं, ज्ञानी बच्चे हैं, कहीं भी सेंटर में जाओ, यहां भी हॉल के अंदर आओ, जैसे चप्पल बाहर छोड़ते हो कि बच्चे चप्पल पहन के आते हो, हॉल में बच्चे चप्पल पहन के बैठे हुए हाथ उठाओ, कोई भी एक भी नहीं है, चप्पल बाहर छोड़ते हैं ना। बड़ों के भी छोटों को भी, जिसके पास भी मोबाइल है, दरवाजे से अंदर घुसते हो, चप्पल बाहर छोड़ते हो, उसी समय मोबाइल को स्विच ऑफ करके अंदर आना चाहिए। अगर बड़े करेंगे तो बच्चे भी बड़ों को हर सेकंड देखते रहते हैं, बच्चों को सिखाने वाले कौन। तो बड़ों को पहले ध्यान देना है कि हमें अंदर हॉल में आते ही हम पढ़ने के लिए आ रहे हैं, योग करने आ रहे हैं, तो वहां मोबाइल का काम नहीं है। अगर मोबाइल से किसी को कुछ बात करना, पहले बाहर ही करो, वो काम कंप्लीट करके फिर आ जाओ। टू थिंग्स कैन नॉट बी डन एट द सेम टाइम, दो काम एक साथ नहीं हो सकते, या योग करो या ज्ञान सुनो या मोबाइल से बिजनेस करो। तो यहां बैठ करके हम ज्ञान योग करते हुए भी मोबाइल से भी काम करना चाहते हैं, तो उसके अंदर किसी में परफेक्शन नहीं है। यहां बैठे हुए भी शांति नहीं, मुरली सुनने बैठेंगे आप, अभी भी हम देखते हैं मुरली के क्लास में भी मोबाइल लेके मोबाइल पर देखते रहेंगे, तो किसके लिए पढ़ रहे हम, किसके लिए मुरली किसके लिए पढ़ता है, पढ़ाई है। जैसे स्कूल में अगर हम बच्चों को कहे, पहले बड़े ही स्कूल में यहां बाबा के घर में सेंटर में आते हो, तो वहां भी मोबाइल साथ में चाहिए। इतना कोई डॉक्टर, हां एक व्यक्ति को जरूरी है, वो भी देखा, एक व्यक्ति को 24 आवर्स मोबाइल रखना जरूरी है। वो कौन है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को रखना। देखो बच्चे होशियार है, और बताओ, एक व्यक्ति को 24 घंटा रात को भी मोबाइल अपने नजदीक रखना जरूरी है। वो कौन है बताओ? जो नंबर वन बच्चे आने वाले हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर जैसे बनने वाले, वो बच्चे बताएंगे कौन बच्चे, बहनों में से बताओ कौन? डॉक्टर, किसने बताया डॉक्टर, हाथ उठाओ। हाँ देखो ये नंबर वन, हाँ डॉक्टर को जरूरी है। क्यों? कभी किसका एक्सीडेंट हो गया, कल और कुछ हो गया, ऐसा हुआ गुजरात में, मां बाप नहीं चाहते थे बच्चों को, एक बच्चा डॉक्टर था, एक प्रैक्टिकल कहानी बताता हूं, और मां बाप नहीं चाहते मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाए, लेकिन डॉक्टर बेटा रोज सेंटर में जाता था बैच पहन करके, और रात को एक दिन किसी का 2 बजे फोन आया, बेटा कोई बच्चा सीरियस है, डॉक्टर साहब को बचाओ। डॉक्टर साहब ने फोन उठाया नहीं, रात को सो जाना है। उनके मां बाप ने सुना और कहा बेटा चलो जल्दी, कोई बीमार है, कोई कुछ हुआ, उठो। तो वो सेंटर के कपड़े पहन के ही गया, गया और बीच में एक्सीडेंट हो गया डॉक्टर का ही, किसी को पता नहीं, बेहोश होके गिर गया। फिर किसी ज्योतिष ने कहा उनके पास कोई एक तावीज है, उसने उसको बचाया है। तो मां बाप को पता चला कौन सी तावीज है, वो रात को कौन से कपड़े पहन के गया था, ये सफेद कपड़े पहन के था, बैच लगा हुआ था, ये बैच ने बचाया उसको। तो बाबा भी कहता है बच्चों को, सच्चे रोज ये बैच, ऐसा बैच नहीं है स्कूल के बैच नहीं, ये सर्वशक्तिवान शिव बाबा आके देता है, और एकदम नहीं मिलता है। जो बच्चे स्कूल में कम से कम सेंटर में आते हो, एक साल तक गुस्सा नहीं करते हैं, एक साल तक बाहर की कोई चीजें नहीं खाते हैं, बाहर की कोई चीज नहीं करते, एक साल तक गुस्सा नहीं करते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, ऐसे बच्चों को ये बैच सेंटर की टीचर देती है। सभी को नहीं मिलता है, बाकी सब इधर उधर के पहन लो, उसमें ताकत नहीं है। तो ये बैच में इतनी ताकत है, आप दुनिया के किसी कोने में जाओ, आपका सम्मान होगा। कभी कुछ भी हो जाए हर परिस्थिति में आपके बचाव होगा। क्योंकि बाबा के महावाक्य, बाबा ने कहा इस बैच में पांच चीजें हैं, फूल है, फल है, हीरे जवाहरात है, महल है। साधारण बैच नहीं है ये। तो ये बैच के एक डॉक्टर को 24 घंटा अपने पास रखना जरूरी है। आज के जीवन में किस समय कोई बीमार हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर मुरली क्लास में बैठा है, योग करने बैठा है, खाने पर बैठा है, फोन आता है, एक मिनट लेट हो गया तो क्या होगा? जैसे आप सबने सुना, हम अभी 5 मिनट उनको योगदान देंगे। देखे सूरत में देखा, देखो कितने बच्चों ने अपनी शरीर को गवाया, 5 मिनट लेट हो गया। कौन लेट होया? जो अग्नि बुझाने वाले, आग बुझाने वाले, जो पानी वाले होते हैं फायर फाइटर, वो आने में 2-3 मिनट लेट हो गया। कितने बच्चों की मृत्यु हो गया। तो ऐसे लोगों को है, अग्निशमक दल है, डॉक्टर्स है, उनको ये मोबाइल जरूर साथ में रखना पड़ता है। इसलिए अभी हम याद आ गया, हम सभी उठ करके खड़े हो जाएंगे 2 मिनट और उन बच्चों को शिव बाबा को कहेंगे, पहले सुनना, शिव बाबा को कहेंगे बाबा जो आपके बच्चे हैं, वो हमारे नहीं आपके बच्चे हैं, जो शरीर छोड़ के आपके पास आए उनको अच्छा शरीर दे दो, उनके अच्छी तरह से पढ़ाओ, उनको सदा सुख शांति दे दो। ऐसे शिव बाबा से बात करना, आपकी अर्जी। बाबा ने कहा बच्चों का आवाज बाप सुनता है। ऐसे हम करें, 2 मिनट सब बच्चे उठ करके शिव बाबा को बताना। समझ में आया बच्चों को कहां कहां मोबाइल किसको जरूरत है? एक व्यक्ति को जरूरत है, 1 मिनट अगर लेट होता है देखो कितने बच्चों की जान गई। और बाबा कहता है बच्चे आप सभी मिलकर के अगर बाबा को आह्वान करते हो, बाबा को बताते हो, तो बाप बच्चों की विश्व कल्याणकारी बाप है। सारे विश्व के आत्माओं निर्दोष है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, पढ़ने गए थे। किसी एक व्यक्ति की लापरवाही के कारण बहुत आत्माओं को दुख भोगना पड़ता है। एक व्यक्ति की गलती होती है। तो ऐसे निर्दोष बच्चों को संगठित रूप में अगर आप संकल्प देते हो तो बाप बच्चों का संकल्प सफल करता है, सिद्ध करता है। क्योंकि निर्दोष है, किसी का कोई हिसाब किताब ऐसा नहीं है, उन्होंने गलत कर्म किया था उसके लिए उनको सजा मिली, ऐसा नहीं है। यहां यह संगठित रूप में होता है, सब मिल करके। ऐसे शांति की शक्ति रोज देते रहो। और बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए कि जहां भी पढ़ने के लिए कहीं भी जाते हो गड़बड़ी नहीं करना। जैसे यहां देखो हॉल से बाहर जाते हो एकदम दौड़ते हो, दौड़ते में एक गिर गया उसके ऊपर दूसरा गिर जाएगा। तो इसलिए बच्चों को यह ध्यान देना, कहीं भी जाते हो लाइन से जाओ, एक के बाद एक, दौड़ दौड़ के कहां जाएंगे आप? कल गिर जाएंगे, पाँव फ्रैक्चर हो जाएगा, घर में बैठना पड़ेगा, पढ़ नहीं सकेंगे। खाना लेने जाते हो वहां भी लाइन से जाओ, एक के बाद एक। खाना खत्म नहीं होगा, खत्म होगा तो बाबा आपको दोबारा खिलाएगा। एक के बाद गड़बड़ी करके एक दूसरों को धक्का दे करके आगे जाते हो, ये बच्चों की मर्यादा नहीं। दैवी कुल वाले बच्चे, देवताए कुल वाले बच्चे हो, इसलिए आज बाबा ने मुरली में कहा था कि बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने आता है, दैवी गुणों की स्थापना करने आता है, तो वो किसको सुनाएगा दैवी गुण? बच्चों को है ना, और वो भी बाहर की दुनिया के नहीं, पहले बाबा के बच्चों को। हमें याद है जब मैं कॉलेज पढ़ता था तो प्रिंसिपाल पढ़ाने आता था एक सब्जेक्ट, तो प्रिंसिपाल कहता था अगर अच्छे दैवी गुण सीखना है तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाओ, ओपनली हर लेक्चर में कहता था। अच्छे गुण सीखना चाहते हो तो बाबा के घर में रोज, बाबा बच्चों को देखो, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, तो बाप कैसे पढ़ाता है रोज। और बच्चों को कहता है बच्चे धीरे से आवाज नहीं करना, ओम शांति कहते हो, ओम माना आत्मा, आत्मा शांत, जब पढ़ते हो इधर उधर देखते रहो, खेलते रहो, खेलने का समय अलग है, पढ़ने का समय अलग है। मैं आपको एक अनुभव बताओ, देखो एक माताजी एक अपने बच्चों को लेके आई और कहने लगे भाई जी ये बेटा हमारा सारा दिन क्रिकेट खेलता रहता है, पढ़ता नहीं बिल्कुल, रोज एक बॉल चाहिए, एक बैट चाहिए, और नहीं देगा तो रोता रहेगा, तो क्या करना चाहिए बताओ? बड़ा बेटा बताओ, बड़ा बच्चे बताओ, उसको क्या करना चाहिए? आप ही जवाब दे दो। अगर वो सारा दिन खेलता रहता है, पढ़ता नहीं है, तो मां बाप को क्या करना चाहिए? एक टाइम खेलने का, एक टाइम पढ़ाई करने का। हाँ ये छोटा बताता है, बताओ लाल वाला बताओ। थोड़ी देर में टाइम बताओ, स्कूल कब से कब होता है, कब से कब स्कूल में जाएगा, कब खेलेगा, कब होमवर्क करेगा, वो टाइम टेबल आप बताओ। हाँ 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 पहले खेले कि पहले होमवर्क करे? पहले होमवर्क करे ना। हाँ ये बताओ फिर। हाँ हाँ ऐसा करना चाहिए ना, आप ऐसे करते हो कि पहले खेलने जाते हो? हाँ पहले होमवर्क करते हो फिर खेलने जाते हो ना। अच्छा योग के लिए जाते, खेलने नहीं जाते हो, अच्छा इसलिए हुशार हो, गुड। हाँ तो उस बच्चे को कहा, नहीं तो बच्चे कहेंगे हमने उस बच्चे को कहा बच्चे माताजी वो बच्चा सचिन तेंदुलकर जैसा खेल करके लाखों रुपया लेके आएगा, पढ़ाई थोड़ी पढ़नी चाहिए, खेलने दो तो चलेगा ना। अभी सचिन तेंदुलकर देख लो, खेल खेल करके लाखों रुपया कमाता है, तो पढ़ाई पढ़नी चाहिए क्या? फिर उसको पूछा कि आप स्कूल में जाएगा कि क्रिकेट खेलेगा? कहता मैं दोनों करूंगा। मैंने कहा दोनों नहीं हो सकता, एक हो सकता है, या खेलना या पढ़ाई करना, नहीं दोनों हो सकता है। कहने लगा कैसे? कहते जैसे इसने कहा शाम को 5 बजे तक स्कूल होता है, स्कूल के आने के बाद होमवर्क करके 1 घंटा खेलूंगा। हमने कहा मम्मी को बॉल और बैट लॉक करके रखे, 6 बजे आपको देंगे, चलेगा? कहते चलेगा। तो 1 घंटा खेलता है। तो बच्चों को समझाना पड़ता, उसको पूछा अगर आप पढ़ेंगे नहीं विदेश में क्रिकेट खेलेंगे कि देश में खेलेंगे? विदेश में खेलना है तो इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। कहता मैं पढ़ूंगा जरूर। तो व्यवस्था बना के देना पड़ता है, कब पढ़ना चाहिए, कब होमवर्क करना चाहिए, कब खेलना चाहिए, कब मोबाइल देखना चाहिए। तो माँ बाप अगर बच्चों को व्यवस्था करके देते हैं, बच्चे इस समय खेलो, ये खेलो नहीं, मोबाइल नहीं देखो, ना शब्द को परिवर्तन करना है। अगर ना को परिवर्तन करके सुझाव देंगे, व्यवस्था बना के देंगे, इस समय ये खेलो, इस समय ये करो, इस समय ये करो, टाइम टेबल बना के दे दो, तो बच्चे मानते हैं। लेकिन समझाने वाला व्यक्ति मां बाप के पास वो पावर चाहिए, वो आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। तो बच्चे मां बाप को ही पढ़ाने लगते हैं आजकल, क्योंकि बच्चों के पास पावर है, मां बाप शक्तिहीन हो गए हैं। इसलिए बाबा ने कहा माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश रखा है कि माताएं पहले ज्ञान सुनो, मां बाप को ज्ञान चाहिए। अगर मां बाप समझदार है बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाते। इसलिए आपको अभी मैं दिखाता हूं, इधर स्लाइड पर देखना, बच्चों को परीक्षा में डर रखती है, परीक्षा में क्या होगा, देखो विदेश में
okay, students, settling down, thank you. You are about to begin your exams.
इसमें दिखाया कई बच्चे खेलने में हुशार होते हैं, पढ़ने में नहीं है. कई बच्चे गीत गाने में हुशार होते हैं लेकिन पढ़ने में हुशार नहीं होते हैं.
These exams are exceedingly important and I want you to take them seriously. These exams will determine what you become in life.
Sorry, miss. This was a letter written by a head teacher in Singapore. I think it's really important for the teachers, your parents, and for you to hear. Dear parents, the exams of your children are to start soon. I know you're really anxious for your child to do well. But please do remember, amongst the students who will be sitting for their exam, there's an artist who doesn't need to understand math. There's an entrepreneur who doesn't care about history or English literature. There's a musician whose chemistry marks won't matter. There's a
sports
person whose physical fitness is more important than their grade in physics. If your child does get top marks, that's great. But if he or she doesn't, please don't take away their self-confidence and their dignity from them. Tell them, it's okay. It's just an exam. They'll find your whole future. There is so much more potential.
और वो था मेरा बेटा सिद्धू.
देखो बाहर की चीज
उसे संभालते हुए खुद को भी संभालने लायक हो गई. लेकिन ये खुशी के दिन ज्यादा नहीं टिके.
बाहर के आइसक्रीम खाते
वो धीरे धीरे बीमार रहने लगा. मुझे लगा नॉर्मल बीमारी है. डॉक्टर ने सिटी स्कैन करवाया. जिंदगी का सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब पता चला कि उसे कैंसर था.
बच्चे बाहर की चीज खाते हैं तो कैंसर की बीमारी होती है.
तू ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं हुआ. हम उसे नहीं बचा पाए. मुझे यकीन नहीं हो रहा था. फैमिली हिस्ट्री में किसी को कैंसर नहीं हुआ था. मैं बहुत परेशान थी इसलिए एक दिन मैं डॉक्टर से मिलने गई. क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ डॉक्टर?
पैक्ड फूड या ड्रिंक्स टेस्टी बनाने और उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए ज्यादातर फूड कंपनीज हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स ऐड करते हैं. टेस्ट अच्छा होने से बच्चों को उनकी आदत पड़ जाती है. इससे लॉन्ग रन में कुछ बच्चों के इंटरनल बॉडी पार्ट्स में डैमेजेस होने लगते हैं. डिपेंडिंग ऑन देयर रेजिस्टेंस कैपेसिटी टू फाइट डिजीजेस कुछ बच्चों पर उसका कम असर होता है. वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चों पर ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है. अब स्ट्रांग इम्यून वाले बच्चे ट्रीटमेंट के बाद रिकवर हो जाते हैं पर बहुत से कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चे अपनी जान गंवा बैठते हैं. बच्चा कितनी क्वांटिटी में उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है उससे भी बहुत फर्क पड़ता है. ज्यादा प्रॉफिट के लिए फूड कंपनी सस्ते और घटिया इंग्रेडिएंट्स डालते हैं जैसे आटे की जगह मैदा, आर्टिफिशियल कलर्स, हार्मफुल केमिकल्स जैसे सोडियम नाइट्रेट, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, घटिया क्वालिटी का ऑयल एक्सेट्रा. आपके बच्चे का रेजिस्टेंस पावर लो था. लंबे समय तक जंक फूड और पैक्ड ड्रिंक्स कंज्यूम करने की वजह से उसे कैंसर हुआ. ज्यादातर फूड कंपनीज ना तो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस और रूल फॉलो करती है ना ही खाते हो. ह्यूमन वैल्यू से उन्हें कोई सरोकार नहीं. पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए. बच्चों को जंक फूड से दूर रखना चाहिए और उन्हें घर का खाना ही देना चाहिए. वही सेहतमंद है. दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट्स जिन देशों में हैं उनमें हमारे देश का नंबर दूसरा है. कितने दुख की बात है हमारी नई पीढ़ी फास्ट फूड की शिकार हो रही है. उसकी वजह से मर रही.
आगे बढ़ा. अभी बच्चे बताओ बाहर का जो कोई भी कुछ खाएगा नहीं वो हाथ उठाओ. हाँ बाहर का खाएंगे तो ऐसे बीमार पड़ेंगे. देखो भगवान हमारा दोस्त है. हमारा दोस्त कौन कौन दोस्त है हमारा?
koi nahi o baba my best friend o baba my best friend har pal har din sirf yahi kahu o baba my best friend o
बच्चे देखो प्राइम मिनिस्टर के सामने कैसे स्पीच करते, छोटे से बच्चे, ऐसे बच्चों को स्पीच करना सीखना चाहिए।
अंजनाक्षी जो कि कर्नाटका से है, मंच पर उन्हें आमंत्रण है कि वे भी कुछ कहें, अपने उद्गार व्यक्त करें।
रूट आउट द बैड थिंग्स, द मीनिंग द दासी टू गिव इट बैक एज गुड, एंड यम मीनिंग यासी दैट इज टू रिवॉल्व। दिस इज हाउ द हार्ट फंक्शंस इन अ बॉडी एंड कीप्स इट एज वन। दिस इज हाउ भारत फंक्शंड इन द पास्ट। It took in everything and gave back all the good to the world, and the world revolved around Bharat, and this is how we should function in the future also. Bharat is a country that is already geographically connected, and we can make this connection stronger by laying down roads and connecting the various ports through programs like Sagarmala and the Golden Quadrilateral. And also the population could be more connected by assuring the population that wherever you go in this part of the country, you will have equal access to all the facilities and still be treated as a children of this country.
देखो बच्चों को ऐसे स्पीच करना सीखना चाहिए।
What an amazing
सोशल मीडिया पर ऐसी चीज आती है, ऐसे देख करके ऐसे स्पीच करना सीखना चाहिए।
empowered with a good human resource.
शिव जयंती है आई, ज्ञान प्रकाश फैलाने, एक ईश्वर के बच्चे हम, सत्य ये समझाने।
देखो शिव बाबा
ईश्वर अल्लाह
समझाता है बच्चों,
गॉड वाहेगुरु सच्चा हुजूर है, निराकार वो परम पिता, सत्य सुंदर नूर है। हर धर्म उस एक की महिमा गाता है, हर धर्म शिक्षक उस एक की ओर ले जाता है। प्रेम शांति सद्भावना
लेकिन भगवान एक,
हर धर्म का सार है,
सत्यम शिवम सुंदरम।
जिसने समझा इस सत्य को वही हुआ पार है, डूबती जग की नैया को फिर से पार लगाने, एक ईश्वर के बच्चे हम, सत्य ये समझाने। शिव जयंती है आई, ज्ञान प्रकाश फैलाने। धर्म गुरुओं ने जो दी उन ऊंची शिक्षाओं से जुड़ना है, शिक्षाओं को धारण कर सत्कर्मों की ओर मुड़ना है। प्रेम शांति स्वधर्म तुम्हारा, परम पिता ये कहते, आत्मा हो तुम सुंदर चेतन, ब्रकुटी में हो तुम रहते।
सभी बच्चे कहाँ बैठे हो? ब्रकुटी
में। अपने सत्य स्वरूप को फिर से हम जाने, स्वधर्म की अद्भुत शक्ति को पहचाने। प्रेम और सद्भाव जब भी जीवन में उतरता है, इसका तेज सारे विश्व को एक करता है। अपनी विद्या से विवाद नहीं एकता हम लाएं, अपनी बुद्धि से विनाश नहीं जग को हम सजाएं। हर ओर गूंजे शांति अमन का संदेश, सुखी हो हर एक जन, समृद्ध बने हर देश। विश्व एक परिवार है, सत्य ये सुनाने। शिव जयंती है आई, ज्ञान प्रकाश फैलाने। एक ईश्वर के बच्चे हम, सत्य ये समझाने।
ओम शांति। देखा बच्चों को, हम सब कौन हैं? आत्मा। किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के। शिव बाबा के बच्चे क्या करते हैं बताओ? कभी बाहर का खाते हैं? हाँ, गुस्सा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं? नहीं। अभी सब मिलके एक मिनट उसको भी योगदान देना, हाँ, और आप सब योग करो। कौन हो इस भ्रकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा? शिव बाबा के बच्चे हो।
शांति।